रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बल धामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है, आज्ञा पालन में कितनी शक्ति होती है। सीता जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्रद्धा पूर्वक गौरी के मंदिर में जाकर प्रार्थना की। इधर भगवान राम अपने गुरु महाराज की आज्ञा लेकर फुलवाड़ी में आए, फूल लेकर के गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया। सायंकाल का समय हो गया, राम और लक्ष्मण अपने स्थान पर आए। राम जी को नींद नहीं आ रही है, पूर्णिमा की रात है। देखो रासलीला जैसा ही प्रसंग है ये। रासलीला के दिन भी पूर्णिमा थी, ऐसे पूर्णिमा की बात है। तो राम और लक्ष्मण दोनों बैठे हुए थे। पूरब दिशा से जब चंद्रमा उतरता हुआ दिखाई दिया तो राम जी महाराज चंद्रमा को देखते रहे। लक्ष्मण, सीता का मुख और चंद्रमा एक जैसा मालूम देता है। नहीं नहीं नहीं, सी वदन सम हिमकर नाही, सीता के समान ये चंद्रमा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? चंद्रमा कैसा शीतल है, कैसा स्वच्छ है, निर्मल है। ऐसा ये क्यों नहीं है? जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग। मारवाड़ी शब्द है ना बापड़ो, तुलसीदास जी ने वो ले दिया बापड़ो। चंद्रमा तो बापड़ो रंग है। बापड़ो माने बाप रो, जो बाप न रोवे, जो बाप मर जावे जगो। चंद बापड़ो रंग, चंद्रमा के समान सीता का मुख नहीं है। सीता का मुख तो बहुत सुंदर है, चंद्रमा में तो कमियां है। क्या? जन्म सिंधु, खारे से खारे जल से तो इसका जन्म हुआ है। और बंधु विशु, और इसका भाई है वो जहर है। जहर भी इसी से ही निकला था, शंकर भगवान ने पिया वो। और दिन मलिन, दिन के अंदर चंद्रमा मलिन हो जाता है। और सकलंक, राहु वगैरह के द्वारा ये ग्रस लिया जाता है। इसलिए सीता का मुख है, सीता का जन्म समुद्र से नहीं हुआ है, अयोनिजा है सीता जी। सीता जी का भाई, सीता जी का कोई भाई नहीं है। और सीता जी का मुख हर समय प्रसन्न, और सीता जी के सीता जी निष्कलंक, इसलिए सीमुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग। चंद्रमा की कलाएं घटती रहती है, बढ़ती रहती है। चंद्रमा दुख देने वाला है। ग्रसव राव निज संधि ही पाई, अपना समय आने पर राव इसको ग्रसता रहता है। कोक शोक प्रद चकवा होता है वो चंद्रमा देखते ही उदास हो जाता है, क्योंकि संध्या के समय रात्रि के समय चकवा चकवी एक पिंजरे में रख दो यूं हो जाते हैं अपने आप ही, चकवा चकवी यूं हो जाते हैं, एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, और कमल का ये चंद्रमा द्रोही है, कमल है सूर्य को देखते तो यूं खिल जाते हैं, यूं उधर ढीला हो जाता है। अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही वैदेही मुख पटतर दीने, अरे पटतर माने उपमा, सीता जी के मुख से तेरी क्या उपमा दी जाए, यदि देंगे तो हमको बड़ा पाप लगेगा, दोष लगेगा। ऐसे अपने भाई से बात करते करते कि भाई सीता जी के मुख के साथ में चंद्रमा का किसी प्रकार से कुछ कहा नहीं जा सकता। गुरुजी ने कहा अरे भाई आप तो अभी यहां आए थे और वापस तुम जाके वापस कैसे आए, जाओ आराम करो, तो आराम करने लगे। राम जी महाराज ने अपने भाई से फिर कहा उयव अरुण अवलोक, रात भर सोए, प्रातःकाल जब जगे ना तो लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण देखो ये सूर्य उदित हुआ है, कितना देखो चंद्रमा का तो यहां पर चंद्रमा क्यों हल्का बताया, सूर्य का कितना अच्छा बता रहे। उयव अरुण अवलोक होता पंकज कोक लोक सुखदाता, सीता जी का इतना प्रेम राम जी के हृदय में बस गया कि चंद्रमा तो उनको जो है दुख देने वाला बना और सूर्य उनको सुख देने वाला बना। तो कहने लगे देखो ये जो चंद्रमा ये जो सूर्य है कैसा लाल लाल कितना अच्छा लगता है, देखो सब कमल की शोभा कैसी खिल गई है, चकवे लोग खुश हो गए, सारा लोग अपने काम धंधे में लग रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज ये चंद्रमा ये सूर्य उदित नहीं हुए है, ये सूर्य उदित होकर के आपका प्रताप बता रहे हैं। अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन, तारे सब छिप गए, तारे कोई सूर्य के उदित हो जाने के बाद तारे कहीं जाते थोड़े ही जाए और अब आ गए हो, ऐसा नहीं है, तारे वहीं रहते हैं, ये तारे वहीं रहते हैं, बस यही है कि सूर्य का इतना प्रकाश रहता है कि तारे आकाश में दिखते ही नहीं। तो जब ये सूर्य उदित होते हैं तो कुमुदनी सकुजा जाती है और उड़गन माने ये तारे ये मलिन हो जाते हैं, जैसे आपके आने पर लोगों को पता चला ना कि दशरथ जी के पुत्र राम यहाँ आ गए हैं तो सब राजाओं का बल क्षीण हो गया, ताराओं के समान नृप सब नखत, ये सब राजा तो नक्षत्र के समान है। करे उजियारी, ये कब उजारा करते हैं, ये अंधेरे में उजारा करते हैं। तारी ने सकई चाप तम भारी, ये धनुष को तोड़ना एक रात है, इस रात में इनका प्रकाश कुछ भी काम नहीं आएगा, चंद्रमा का ये तारों का प्रकाश कभी काम ही नहीं आता। कमल कोक मधुकर खग नाना हर से सकल निशा अवसाना, ये जो कमल कोक मधुकर ये कौन है, ये आपके भक्त लोग हैं, जो चंद्र जो धनुष रूपी रात्रि के टूटने पर अब आनंदित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया, महाराज आप सोचे तो सरी ये सूर्य क्या कहना चाहता है। देखो अब राम जी ने तो चंद्रमा का वर्णन किया सीता जी से घटती बताने के लिए, हमारे लक्ष्मण महाराज राम जी की उन्नति बताते हुए सूर्य का व्याख्यान कर रहे हैं कि रवि निज उदय ब्याज रघुराया, हे महाराज हे रघुनाथ जी महाराज, सूर्य अपने प्रकाश के बहाने से आपका प्रताप दिखा रहा है कि हमारे राम ऐसे हैं। तब भुजबल महिमा उद्घाटी प्रगति धनु विघटन परिपाटी, आज तक बताओ कि धनुष को तोड़ करके शादी की शर्त किसी की भी हुई है क्या? ये परिपाटी कभी पड़ी है क्या? ये आज पहली बार हो रहा है। जनक जी महाराज के चित्त में ये बात बैठ गई कि भाई सीता राम के योग्य है और राम सीता के योग्य है। सब अयोध्या वास सब जनक वासियों के मन में बात बैठ गई। फिर भी ये जो धनुष को तोड़ने की जो परिपाटी रख डाल दी ना कि नहीं इसको तोड़ना ही पड़ेगा, इसका अर्थ क्या है कि ये सूर्य अब आपके महिमा को, भुजबल की महिमा को उद्घाटित कर रहा है कि चिंता मत करो, ये राम है, ये धनुष को तोड़ देगा। राम जी महाराज का, अरे लक्ष्मण तुझे तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें याद आई। ऐसे बात करते करते वे स्नान वगैरह किए और अपने गुरु महाराज के पास आए। इतने में सतानंद जी महाराज थे, वो जनक जी ने बुलाया और कहा सतानंद जी विश्वामित्र जी महाराज को बुलाओ। और जाओ, जनक जी को तो एक ही बात लगी हुई। सतानंद जी आए विश्वामित्र जी के पास, चलो चलो महाराज अब धनुष यज्ञ हो रहा है, आप दोनों शिष्यों को लेकर के चलोगे, चलो। अब सब झुंड चल रहा है, लोग आपस में बात करते हैं। सीय स्वयं मरु देखिय जाई, ईसु काही धो दे बड़ाई। आज सीता जी का स्वयंवर होने वाला है, देखे आज भगवान किसको ये बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा जस भाजन सोई। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, नाथ कृपा तब जापर हुई है, गुरुदेव जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी ना उसी को ही आज ही यश मिलने वाला है। तो सब ऋषि मुनि लक्ष्मण जी की बात सुनकर बड़े खुश हुए। गुरु कृपा कैसी, देखो गुरु कृपा पर विश्वास है राम जी का, लक्ष्मण जी का। अपने मन ही मन में आशीर्वाद दिया। चलते 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 वो जहां धनुष यज्ञ हो रहा था वहां पहुंच गए। रंगभूमि में जब दोनों आए, सब लोग जो है वहां अपना अपना काम धंधा छोड़कर, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे पुरुष हो, चाहे माताएं बहने हो, सब दौड़ी दौड़ी आई। बहुत बड़ी बारी भीड़ लग गई। जनक जी ने अपने सेवकों से कहा, अरे इतना बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हो रहा, आप लोग बैठने की व्यवस्था नहीं करते हो? सबको ठीक ढंग से बैठाओ, सबको सुविधा पूर्वक बैठाओ। तो वहां व्यवस्था करने वालों ने क्या किया, हल्ला करो, ए बैठ जाओ, ऐसा करो, ऐसा नहीं कहा। कही मृदु वचन विनीत तीन, हाथ जोड़ जोड़ करके, साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप यहां बैठाइए। तीन बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। जो जिस स्थान के योग्य था वहां उन सबको वो बैठा रहे थे। ऐसे समय में विश्वामित्र जी के साथ दोनों राजकुमार आए। राजकुमार ते अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। ऐसा लगता है कि सुंदरता स्वयं सुंदर शरीर बना के आई है। सुंदरता जो होती है वो तो निराकार होती है, सौंदर्य जो होता है उस सौंदर्य की आकृति नहीं होती, आकृति में सौंदर्य दिखता है। लेकिन राम जी महाराज तो ऐसे लगते हैं, राम और लक्ष्मण तो, कि वो जो सौंदर्य है वस्तु आदि में, व्यक्ति में रहने वाला सौंदर्य, वो सौंदर्य वहां से हट करके एक आकृति में आ गया हो। मनो मनोहरता तन छाए, दोनों श्याम और गौर शरीर वाले दोनों राजकुमार गुणों के सागर है और नागर है, नागर माने चतुर है और श्रेष्ठ योद्धा है। सारी भीड़ इनको देखने के लिए उलट पड़ी हो। सारे राज समाज विराज तरुणे, उड़गन बहुजन जुग बिंदु पूरे, सब जितने राजा लोग सब तारों के समान और दोनों ये चंद्रमा के समान। दो चंद्रमा कभी नहीं होते आकाश में, आज चंद्रमा हो रहा है, ये तो कई बार के आए। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। कैसी कैसी मूर्ति देखी भाई, देखो ये चौपाई है ना, इतनी बढ़िया, इतनी काम की है, ये कहते भगवान है वो कभी आपको नहीं कहेंगे कि मैं भगवान हूँ। हम लोग सोचते हैं कि भगवान हमको बोल देवे कि भगवान बता देवे कि मैं भगवान हूँ, कभी नहीं कहेंगे। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी जैसी भावना होती है अंदर से, वो भावना ही उनके स्वरूप को बताने वाली होती है। जैसे जो रणधीर पुरुष है, योद्धा लोग हैं, उनको भगवान कैसे दिखते हैं, जैसे कोई वीर रस आ गया हो। और ये कितने शूरवीर आए हैं, वीर रस शूरवीर। और जो कुटिल राजा लोग थे, वो भगवान को देख करके, अरे इनमें तो बड़ा बल है भाई, भयानक रूप दिखाई देने लगा। क्योंकि उनके अंदर कुटिलता रहती, वो कुटिलता ही, अंदर की कुटिलता ही उनके बाहर राम जी में दिखती है। देखो कांच होता है ना, कांच में देखते हैं तो कांच में क्या दिखता है, अपना मुख दिखता है कांच में, कि कांच बड़ा अच्छा है जी, और ये कांच बड़ा खराब है। कांच तो वही है जैसा है, आपने अपना मुख देखा, आपका मुख खराब है, दूसरे का मुख अच्छा है, ये कांच अच्छा हो गया। तो ऐसे ही भगवान कैसे है भाई, जैसी हमारी भावना है। रहे असुर छल, कई असुर ऐसे थे जो छोनीप वेशा, राजा के वेश में छिप करके बैठे हुए थे, वो राव वो क्या करे, यूं बैठे हो, अरे कहीं हमको देख नहीं ले, हमको देख नहीं ले, तीन प्रभु प्रकट काल सब देखा। उनको भगवान काल के समान दिखाई देते हैं। और जनकपुर के जो लोग बैठे हुए हैं वहां, अरे वो है, वो देखो वो कल देखे थे, वो देखो वो है, कल अंगुली करके इशारा करके उत्सुकता पूर्वक, नरभूषण लोचन सुखदाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। वहां स्त्रियां बैठी हुई थी, स्त्रियां एकटक देख रही है, नारी भी लोक ही हरसी ही है, हमारे जवाई साहब बन जाए तो कितना अच्छा है। जनु सोहत श्रृंगार धरी, जैसे कोई श्रृंगारी वेश बना करके आया हो, ऐसे बहुत सुंदर से दिखने लगे। अब देखो जो विद्वान पुरुष थे, अब भगवान तो भाई एक ही सिर है, दो भुजा है, और एक ही वक्षस्थल है, दो चरण, जैसे आपके हमारे शरीर ऐसे भगवान का शरीर। पर उन विद्वानों को कैसे लिखते हैं कि विराटमय, उनको दिखता है बहुमुख, कर पग लोचन शीश, और इनके तो कई सिर है, इनके तो कई हाथ है, इनके बहुत से चरण है। देखो एक दृष्टि होती है, जितने मनुष्यों के माथे है ना, ज्ञानी लोग समझते हैं ये भगवान का विराट रूप है। आपके हमारे जितने हाथ हैं, ज्ञानी लोग वो भगवान का हाथ मानते हैं। आपके हमारे जितने चरण हैं, ज्ञानी महात्मा वो भगवान का चरण। अरे इतने भगवान इकट्ठे हो गए आज तो। संतों की बड़ी विचित्र भाषा थी, हो संत बोलते थे आपस में कि आज बहुत से भगवान आए, उसमें एक दो चोर भगवान भी आए थे, तो वहां पर पुलिस भगवान भी आई, और फिर डंडे भगवान से उनकी बड़ी पूजा करी, ऐसे बोलते थे वो। हर शब्द के साथ में बहुत विचित्र भावना थी। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। और जनक जी महाराज के भाई बंधु इधर उधर के ज्ञाति नाती लोग आए, उनको ऐसे लगे जैसे कोई हमारे स्वजन हो, हमारे परिवार के ही हो, बड़े प्रिय लगते थे। देखते जाओ अब देखो जनक जी महाराज ने खुद ने देखा, और वहां सुनैना जी बैठी थी, उन्होंने देखा, दोनों ने देखा। सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। सुनैना जी के तो आंखों में पानी आ गया, अरे ये बच्चे यहां धनुष यज्ञ में कैसे आए। कभी तो वो धनुष को देखती है सुनैना जी, कभी राम जी को देखती है। यो यो इधर प्रेम पैदा होता है, और इधर ये कठोरता से उनका हृदय संकुचा जाता है। शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। क्यों जी, शिशु के समान देख रहे हैं, ये तो आपने कह ही दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनके प्रेम को मैं कह नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकते? कह दिया ना कि बालक के समान देखा, ये नहीं है इनका प्रेम। देखो धनुष को देखते हैं और इन दोनों को देखते हैं तो क्या भावना होती, वो मेरे कब्जे में नहीं आई। बड़े बड़े योगी लोग बैठे थे जनक जी के यहाँ, बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष थे योगी लोग, ज्ञान मार्गी, अष्टावक्र जी जैसे महापुरुष, जहां कोई भी बात करो ऐसा बढ़िया जवाब देवे अष्टावक्र जी। ऐसे ऐसे जो योगी लोग हैं, जो परब्रह्म परमात्मा में ही, परमात्म तत्व में ही मस्त रहते हैं, उनको कैसा लगा कि जैसे कोई शांत और शुद्ध प्रकाश स्वरूप तत्व यहाँ पर विद्यमान है। जैसे लाइट का प्रकाश होता है ना, ऐसे ज्ञान का भी एक प्रकाश होता है। अंदर से ज्ञान का प्रकाश होता है तो अपना संदेह, अपनी मूर्खता एकदम भाग जाती, जैसे लट्टू करते ही अंधेरा भाग जाता है, ऐसे होता है। इसलिए सहज प्रकाशा। भगवान के भक्त लोग थे, उन भक्तों ने देखा कि हमारे इष्ट देव आ गए, इष्ट देव आ गए। तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ। गोस्वामी जी महाराज एक बार वृंदावन गए, वहां पर एक भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर मंदिर, उनकी प्रतिमा देखी। लोगों ने कहा देखो महाराज प्रतिमा। तुलसीदास जी महाराज गए, देखते रहे कि महाराज प्रणाम करो, बोले नहीं। अरे प्रणाम करो महाराज, भगवान कृष्ण की मूर्ति है, बोले नहीं। मन से बोले वाह छवि आपकी कैसी अनुपम बनी है आपकी, अब ये तुलसी मस्तक जब नवे तब धनुष बाण लो हाथ, ये मुरली तो हटाओ धनुष बाण दे। जितने पास में लोग थे ना उनको तो मुरलीधर भगवान दिखते हैं, तुलसीदास जी को एकदम धनुषधारी भगवान दिखे। तुलसीदास जी ने जाकर प्रणाम किया। लोगों ने पूछा कि महाराज आपने बहुत देर में प्रणाम किया, पहले क्यों नहीं किया? कि पहले इन्होंने धनुष बाण लिया नहीं, मैं क्या करूं? तो धनुष बाण है, हाँ धनुष बाण है, हमको तो मुरली दिखती है। अरे कहां मुरली, देखो कितना अच्छा धनुष है, कितना अच्छा बाण, देखो 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 तो सही आप। अब वो तो उनको तो मुरली दिखे, उनको धनुष बाण दिखे। तो फिर तुलसीदास जी ने जब धनुष बाण से देख लिया तो उस मंदिर को भी राम जी का ही मंदिर बना दिया। राम ही चितव भाई जय सिया। अब सीता जी का नंबर आया। देखो राम जी महाराज को जब सीता जी ने देखा, तुलसीदास जी कहते हैं सो सनेव सुख नहीं कथनीया, वो आनंद तो मैं कह ही नहीं सकता हूं। सीता जी के मन में उर अनुभवती न कही सकसो, ऐसे ऐसे आनंद के हिलोरे उठ रहे हैं, न तो बिचारी किसी से कुछ कह सकती है, न और कुछ बात कर सकती है, क्या करे, उसके अंदर ही अंदर वह अनुभव हो रहा है। कवन प्रकार कहे कवि को, कवि होकर के तो कोई उस आनंद को कह नहीं सकता है। सीता जी का आनंद सबसे विलक्षण था आज। राजत राज समाज महु कोसल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन विश्व बिलोचन चो। ये दोनों के दोनों इस सारे राज समाज के अंदर इतने सुंदर, कौशल राज के किशोर इतने सुंदर लगते हैं, एक का श्याम शरीर एक का गौर शरीर, ये सारे विश्व के आंखों की, आंखों के अंदर जो देखने की शक्ति है सबको चुरा रहे, माने सब यूं देख रहे हैं उनको, कितनी सुंदर मूर्ति है इनकी। करोड़ों कामदेव भी इनके सामने हल्के पड़ जाते हैं। अब देखो यहां राम जी ने सीता जी के मुख की निंदा कर दी ना, तो गोस्वामी जी महाराज राम जी के मुख की शोभा में, राम जी की मुख की शोभा में चंद्रमा की निंदा कर रहे हैं। शरद चंद निंदक मुख नीके। शरद ऋतु क्या, जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा राम जी के मुख के सामने निंद्य है, कोई बराबरी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, कुमुद बंद कर निंदक हासा, माने चंद्रमा की जो किरणें हैं उन किरणों के अंदर कैसा एक अलौकिक आनंद रहता है, करने किरणें छिटकती हुई अच्छी लगती है। हमारे राम जी की हंसी कैसी है कि ये चंद्रमा की किरणें भी उसके सामने निंदनीय हो जाती है। आदमी हंसता है ना, एक प्रसन्नता अभिव्यक्ति, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चंद्रमा जिस समय खिलता है उस समय में बहुत उसकी किरणें बड़ी अच्छी लगती हैं कि राम जी की हंसी के सामने वो किरणें भी निंद्य है, कोई काम की नहीं है। भाल विशाल तिलक छलकाई, कच बिलो की अली अवली लजाई, घुंघरालू घुंघरालू बाल, इनके तो और ही विचित्र शोभा है। पीत चौतनी सिरन सुहाई, चौतनी कहते हैं यो ये टोपी, चपटी टोपी। पीत चौतनी सिरनी सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंब कल घेवा, गले के अंदर जो ये चमड़ी में थोड़े थोड़े से क्यों सुंदर सुंदर मधुर मधुर सल पड़ते हैं, वो रेखा रेखे रुचिर कंब कल घेवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सिवाई। रेखाएं क्या बताती है, ये रेखाएं बताती हैं कि मानो त्रिभुवन के सौंदर्य की सीमा आ गई, इससे ज्यादा आपको संसार में कोई सुंदर चीज नहीं मिलेगी। कुंजर मणि कंठा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरि ठवनी बलनिधि बाहु विशाल। हाथी के समान मस्तानी चाल है उनकी, चलते हैं तो हाथी के समान और रुकते हैं तो केहरी ठवनी, सिंह जैसे ही हूं अचल होकर के रहता है। चले तो हाथी के समान, ठहरे तो सिंह के समान, और कंधे कैसे हैं, बैल के समान, वृषभ कंध। और कंठों के आरो कंठों के ये गले के अंदर के मणियों मणियों के ये कंठा बना रखा है, लेकिन तुलसी जरूर उन्होंने पहन रखी है। ऐसा राम जी का स्वरूप, कटितूनीर पीत पट बांधे, कर सम धनुष बाम कर कांधे, दाएं हाथ में तो धनुष है और बाण है और बाएं हाथ में धनुष लटका रखा है, और वो तूनीर है, वो तूनीर यू कमर में लटकर कमर में बांधा हुआ है। ऐसी भगवान की बड़ी विचित्र शोभा है, जो लोग एक बार देख लिए, एकटक लोचन चलतन तारे, ऐसे देख रहे हैं कि नेत्र के अंदर जो तारा है ना वो भी हिलता नहीं है, स्थिर रहता है। ये तारा हिलता ही रहता है थोड़ा थोड़ा, अपने को पता नहीं चलता, पर एकटक लोचन चलतन तारे, ऐसे राम जी के अंदर एकाग्र हो गए हुए। जनक जी महाराज दोनों को देख के बड़े प्रसन्न हुए, और उस भीड़ के अंदर जनक जी महाराज आगे, आइए विश्वामित्र जी महाराज, आइए आइए। अब देखो आइए आइए तो विश्वामित्र जी को बोलते हैं, आइए साहब आइए, और देखते हैं राम और लक्ष्मण को खुश होते, देखते हैं चलिए चलिए आप आगे बढ़िए। मुनिपद कमल गए तब जाई, करी विनती निज कथा सुनाई, खूब उन्होंने अपनी कथा सुनाई। यूं बोलते देखते हैं राम जी को लक्ष्मण जी को देखते हैं, उनका चित्त उधर ही जाता है। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही देखा। ये देखिए महाराज, ये धनुष यज्ञ के लिए ऐसी है, ये यहाँ के ऐसी है, शोभा दिखा रहे, शोभा दिखा रहे हैं कि शोभा देख रहे हो। अब क्या है वो जनक जी जाने, जय जय जाय कुंवर बर दो, तय तय चकित चितव सब को। उस भीड़ में से यूं जा रहे हैं ना, आगे आगे जनक जी, पीछे विश्वामित्र जी और राम और लक्ष्मण, तो जहां जाओ वो भीड़ में से जा रहे हैं, तय तय चकित चिताओ सब का हो, सब काम धंधा बंद हो गया और सब एकटक होकर के राम जी को देखते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माइये यूं देखती है, यूं देखती है, कोई यूं देखती है। निज निज रुख राम ही सब देखा, जैसे जैसे वो देख सकती है उस हिसाब से सबने देखा, लेकिन राम जी का जो दर्शन करते हैं उनके मन में कौन जान कछु मर्म, क्या भावना उनके मन में है कोई जान नहीं सकते हैं। और विश्वामित्र जी, अच्छा ये आप भूमि है, ओहो ये ऐसा महल है, ये ऐसा है, ऐसे बलि रचना मुनि नृपसन कहे हूं, बहुत बड़े बड़ी खुशियां बता रहे हैं विश्वामित्र जी। वाह महाराज आपकी तो बड़ी ठाट बाट है, खूब बता रहे। राजा मुदित, राजा प्रसन्न हो रहे हैं, क्यों? महासुख लय हूं, राजा को तो एक महान आनंद मिल रहा है, इसलिए नहीं कि विश्वामित्र जी मेरे भवन की बड़ाई कर रहे हैं, इसलिए कि विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण है, उनको देखे महासुख लय हूं। सब मंचनते मंचु एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दौ बंधुतः बैठारे महिपाल। राजा ने कहा महाराज इस मंच पर आप पधारिए। एक बड़ा ऊंचा मंच था, उस मंच पर मुनि समेत बंधुतः दोनों बंधुओं को दोनों भाइयों को बैठाया और फिर राजा अपनी जगह पर चले गए। आप देखो एक ऊंचे मंच पर जब ऊंचा बैठता है उसके ऊपर सबकी दृष्टि जाती है। प्रभु ही देह की सब नृपी हरियो, राजा देखने लग गए, राजा राम जी को देख मन में सोचे कि ओ अब अपना यहाँ कोई बस चलने वाला नहीं है। क्यों? अरे चंद्रमा उदित हो जाता है, सूर्य उदित हो जाते हैं, वैसे तो राकेश माने चंद्रमा ही होता है, चंद्रमा उदित हो जाने पर जनु राकेश उदय भय तारे, चंद्रमा उदित हो जाता है तो तारे दिखते जरूर हैं पर तारों की कोई शोभा नहीं होती। ऐसे हम लोग आए जरूर हैं यहां अपना अपना बल बखार करने पर राम के सामने हमारी कुछ चलने वाली नहीं है। कई लोगों के मन में आया कि देखो भाई ये राम है ना, ये धनुष तोड़ तो नहीं सकेगा, बच्चा है, इतना सुंदर है ये। वास्तव में तो सीता जी को बिना विचार किए राम और जनक जी को भी बिना विचार किए राम जी के गले में सीधी जयमाला लाकर यूं डाल ही देनी चाहिए। हम तो यदि सीता के बाप होवे तो सीता को कहते जाओ सीता ये सब यूं हल्ला करते रहेंगे, तुम जाओ इस रास्ते से जाओ और अंदर से जाओ और जाके तुम तो जयमाला डाल दो, मेली सी राम उर्माला और बिनु भंजाऊ सब भाव धनुष विशाला, इस इतने बड़े धनुष को कैसे तोड़ेंगे। और बिना तोड़े ही आज तो राम जी के गले में सीता जी के द्वारा जयमाली डालनी चाहिए, बड़ाई तो इसी बात में है। अस विचारी गौनऊ घर भाई जस प्रताप बलु तेज गवाई। क्या करें भाई, ऐसा दिन देखने को तो मिलेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि राम जी धनुष तोड़े और तोड़ने के बाद ही सीता जी उनके गले में जयमाला डाले, ऐसा संभव नहीं है। चलो भाई अपने घर चलो और तो क्या है। कई लोगों ने क्यों कैसे बातें करते हो, ठरकाई से बोले हो, जे अभिवेक अंध अभिमानी तोरे वो धनुष ब्याह अवगाह बिनु तोरे को कुंवरी ब्याह। देखो लाओ जयमाला लाके देखो तो सही, बिना धनुष को तोड़े सीता जी जयमाला लाए राम जी के गले में डाले हमारे जीते जी, हम कोई मर गए? तोरे वो धनुष ब्याहु अवगाह, धनुष तोड़ो और उसके बाद विवाह करो, नहीं तो बिनु तोड़े को कुंवरी ब्याह, बिना तोड़े देखो कोई कौन क्या करता, आओ किसके दो सिरे आओ हम खड़े हो जाएंगे। एक बार कालो कि न हो, एक बार चाहे काल आ जाए तो क्या होगा, हम काल के साथ भी लड़ लेंगे। अरे सीता के लिए तो हम यहां आए हैं, सिए ही तो समर जितब हम सोऊ, सीता के लिए तो हम मर मिटने के लिए तैयार। कई राजा देखो सब तरह के होते, कई धर्मशील राजा थे, भगत राजा थे, सयाने थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि रे भाई देखो सिय बिहाह बिराम गर्भ दूर करी निपन्न के जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। एक बार किसी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी तुलसीदास जी ने ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको अपने नस में नहीं लिया हो, तो कहा कि क्या बांकुड़ा नाम भी आ गया आपके गांव में, सेठ जी बांकुड़ा रहते थे, कि आपका बांकुड़ा नाम भी आ गया यहाँ, दशरथ के रन बांकुरे। तो वो ज्ञानी लोग कहने लगे कि देखो सीए ब्याह भी राम, ऐसा दिन आएगा हो कि राम सीता से जरूर ब्याह करेंगे। और जितने ये राजा लोग गर्वीले हो रहे ना यूं, इनका सबका गर्व दूर होगा, गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, सबका घमंड दूर होगा। अरे दशरथ के बेटा रणबांकुरे हैं, रणधीर हैं, रणवीर हैं, इनको कोई संग्राम में जीत सकता है? क्यों तुम फालतू की ये बातें मनाते हो? व्यर्थ मरो जनी गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई, भूख तो लगी हुई है, मन के लड्डू बनाए। मन के लड्डुओं से कोई भूख बिटती नहीं है, आपके ऐसी ऐसी बातें करने से सीताराम के विवाह कोई रोकने वाला नहीं है। हमारी एक बात मानो, देखो अभी भी आप अपनी बुद्धि को ठीक कर लो। क्या? हम आपको बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं कि सीता जी को है ना, तुम कहते हो कि हम ले आएंगे, हम लाएंगे, ये हम पढ़ा छोड़ो और मन से सीता को अपनी माँ समझो, और माँ समझ करके सीता जी के चरणों में प्रणाम करो। जगदम्बा जानौ जी सीता, और ये जो राम जी दिखते हैं ना, जगत पिता रघुपति ही बिचारी, ये जगत के पिता है, सीता जगदम्बा है, जगदम्बा मानकर इनको प्रणाम करो। और तुम्हारा तो सौभाग्य, हमारा भी सौभाग्य, इनकी मूर्ति को यहाँ हृदय में बसाओ और चुपचाप रवाना हो जाओ। लीला देव कितने सुंदर है, राम और सीता को हृदय में बसाओ, ये बहुत सुंदर है, आनंद देने वाले हैं। अरे तुम हृदय में बसाओ चाहे मत बसाओ, शंकर जी के हृदय में बसने वाले हैं। ए दौ बंधु शंभु उर्वासी, जब शंकर भगवान ने उनको अपने यहाँ बैठा लिया, और तुम जो है सीताराम के यहाँ इस पवित्र उत्सव में आकर के अपनी अकड़ाई लगाते रहोगे, सीताराम के तत्व को ही नहीं समझोगे, तो भाई ऐसा है जैसे कोई अमृत के समुद्र के पास में जाए और प्यासा मर जाए। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरऊ कत धाई, मृग तृष्णा में, सारे पास में तेरे समुद्र का, ये अमृत का समुद्र है, वो तो पानी पीता नहीं है, और मृग तृष्णा में कल्पित जल के अंदर जाते हैं। तुम इतना उल्टा सोचते हो कि हमारे रहते कौन सीता का भी, सीता के साथ विवाह कर सकता है, हम काल के साथ भी लड़ सकते हैं। इतना तुम गलत सोचते हो, तो तुम सही सही सोचो ना कि सीता जी हमारी माँ है, राम जी हमारे पिता है, इन दोनों का आज बहुत विलक्षण प्रेम अपने हृदय में लेकर के जाएंगे। हमने तो देखो आपको बता दी बात, अब करो आपकी मर्जी की बात है, क्योंकि महात्मा लोग होते हैं वो किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं लगाते, भगवान भी नहीं लगाते। लोग कहते हैं भगवान जबरदस्ती कल्याण क्यों नहीं कर देते, जबरदस्ती भगवान क्या करे भाई, जबरदस्ती कोई अध्यापक किसी शिष्य को ज्ञान दे सकता है क्या? जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं चलती, ज्ञान में जबरदस्ती नहीं चलती। इसलिए कह दिया करहु जाय जाकहु जोई भावा, हमने आपको कहना सो कह दिया, अब आपके मर्जी आवे जैसा आप करो, हम तो आज जन्म फल पावा, हमारा तो जन्म आज सफल हो गया, इन दोनों के दर्शन करने लगे। अस कई भले भूप अनुरागे, ऐसे करके वे तो राम जी की तरफ देखते रह गए। राजाओं को सबको कह दिया अब तुम्हारी आए मर्जी आए वैसे करो। इधर तो ये हुआ, उधर आकाश के अंदर विमानों में बैठे बैठे देवता लोग आए, देवता लोगों को आज बड़ी खुशी हो रही है, देवता लोग अपने विमानों में खूब सा फूल का ढेर लेकर के आए, और फूल लेकर के और वहां सारी सभा के अंदर डालने लगे कि वाह वाह आप लोग राम जी और सीता जी के विवाह के लिए आए हो, आप सबका हम सब स्वागत करते हैं। अब देखो आकाश से फूलों की वर्षा हुई, तो लोग देखने लगे, वो देखते अरे आकाश से फूलों की वर्षा कैसे हो रही है, ऐसी स्थिति हुई। जानी सु अवसरुषियत पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चनीलवा। अब बहुत अच्छा अवसर पाकर के और जनक जी महाराज ने सीता को कहा, बेटा अब तुम जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। सीता जी को आगे भेजा, अच्छी अच्छी सखियां हैं, वो सीता जी को चारों तरफ से घेरी हुई है और सीता जी वहां सभा के अंदर लाई जा रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सीता जी की सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं, सीता जी जगत की माँ है, हम सबकी माँ है, माँ के अंगों की सुंदरता का वर्णन किया नहीं जाता है, माँ के माँ का सौंदर्य देखकर अंदर में प्रफुल्लित हुआ जाता है। मैं कैसे शोभा करूं, सीता एक अप्राकृत है, इस प्रकृति से सीता बड़ी हुई नहीं है, और जितनी उपमाएं हैं वो सब प्रकृति के अंदर ही है। अब किसी से कहे कि भाई तुम्हारी चाल तो, तुम्हारी तुम्हारी आंख तो हिरण की तरह से है, तो हिरण भी प्रकृति की है और ये आंख भी प्रकृति की है, तुम्हारी चाल तो हाथी की तरह से है, तो हाथी भी प्रकृति का बना हुआ और हमारा शरीर भी प्रकृति का बना हुआ, लेकिन सीता जी ऐसी है नहीं। उपमा सकल मोई लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, मुझे सब उपमा बहुत छोटी लग रही है। सीता जी की कोई उपमा देवेगा तो वो संसार में सबसे खराब कवि कहलाएगा और उसकी संसार में बड़ी बेइज्जती होगी। क्यों नहीं हो, क्या समझेगी, क्या हो ना, लक्ष्मी के समान है, लक्ष्मी के समान है, कह दो कि नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी के समान हम कह नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि लक्ष्मी का भाई कौन, लक्ष्मी कहां से पैदा हुई, समुद्र से, और समुद्र से कौन पैदा हुआ, जहर, तो लक्ष्मी का भाई कौन है, जहर। इसलिए देखो भाई, जिसके पास लक्ष्मी खूब आ जाती है ना, उसके अंदर अहंकार का जहर भी आ जाता है, आलस और प्रमाद का जहर आ जाता है। लक्ष्मी जी आई तो लक्ष्मी जी का भाई भी आएगा, विषवारुणी मदिरा है, मदिरा, ऐसे ही जिसके पास लक्ष्मी आदि वो मदांध हो जाता है, नीचे देखता है नहीं, ऊपर से यूं, और नीचे देख वही ठोकर खाएगा, कहां ठोकर, यूं देखता है वो, नहीं देखता। विष बारुणी बंधु प्रिय जय ही कही रमासम किमि बई दे, लक्ष्मी के समान कैसे कहे। अच्छा तो बाबा सरस्वती के समान कह दो कि गिरा मुखर, लक्ष्मी जी बोलती बहुत है, बात बात में चपर चपर करती रहती है, हमारी सीता जी देखो बहुत कम बोलती है, गिरा मुखर। अच्छा बाबा पार्वती के समान कह दो कि नहीं नहीं, पार्वती के समान भी नहीं कह सकते, तन अरद भवानी, पार्वती का आधा शरीर है वो तो शंकर जी में मिल गया और आधा ही शरीर दिखता है, तो पार्वती के समान कैसे कहते हैं, सीता जी तो पूरी शरीर वाली है, पार्वती आधी शरीर वाली है, इसलिए पार्वती के समान भी नहीं कह सकते। अच्छा बाबा सौंदर्य में सबसे बढ़िया सुंदर रति होती है, रति से सुंदर कोई नहीं होता, रति के समान कह दो, ना ना, रति अति दुखित, रति तो हरदम दुखी रहती है, रोती रहती है, क्यों, शंकर जी का साप लग गया कामदेव को, तो वो अब बिना शरीर के ही रहता है, तो अपने पति के लिए रोती रहती है। इसलिए किसके समान उपमा देवे, कोई हमारे पास ऐसी उपमा है ही नहीं, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजुम मंदरु सिंगारु मथे पानी पंकज निज मारू, ऐसे यदि कोई एक समुद्र हो, सुंदरता का समुद्र हो, सुंदरता रूपी अमृत का समुद्र हो, और उस समुद्र के अंदर एक रूपमय कच्छप हो, कछवा है, कछवा जिसके ऊपर मथानी टिकती थी, तो परम रूपमय कच्छप सोई, और शोभा रजु मंदरु सिंगारु, और शोभा रूपी डोरी और मंदराचल श्रृंगारो, और फिर जो है उसका मथन मंथन करे, मथे पानी पंकज निज मारू, और कामदेव अपने हाथ से इसका मंथन करे, ऐसा मंथन करते करते यही विधि उपजे लक्षी जब सुंदरता सुख मूल, ऐसे में जो सुंदरता प्रकट होवे, उस सुंदरता के कारण से सीता जी का निर्माण हुआ या उसके साथ सीता जी की उपमा देवे, तो थोड़ी बहुत देने में संकोच होता है, तद भी सकोच समेत कभी कही सी समतुल, सीता को किसके समान कहे। ऐसी सीता जी सखियों के साथ जा रही है, सखियां जो है गान गा रही है, सुंदर सुंदर सखियां हैं उनकी, और उन सखियों के बीच में सीता जी अपने आप हाँ पहचानने में आ रही है। सखियां भी बड़ी सुंदर, सुह नवल तन सुंदर धारी, सुंदर सारी, पर जगत जननी अतुलित छवि भारी। सीता जी अपने अनुपम सौंदर्य से अपने आप हाँ पहचानी जा रही है। जब सीता जी वहां रंग भूमि पर वहां आई, तब सब जो है उनके रूप को देख करके मोहे नर नारी, देखो नर तो मोहे तो हुए, या तो नारी भी मोहित तो होने लग गई, देखे रूप मोहे नर नारी, क्योंकि सीता जी अप्राकृत है ना, ये दिव्य सौंदर्य, दिव्य सौंदर्य। अपने लोगों का जो शरीर सौंदर्य है वो मांस का सौंदर्य है, मलमूत्र का सौंदर्य है, अपना सौंदर्य मांस मलमूत्र खून का सौंदर्य है, वो जरा सा भी खान पान में बिगाड़ हो जाए, टट्टी पैसा कुछ ज्यादा मात्रा में लग जाए या कब्जी वगैरह हो जाए तो सुंदरता बिगड़ जाएगी, और जरा सी बीमारी आएगी तो सुंदरता बिगड़ जाएगी। पर ये अप्राकृत सौंदर्य है, वो इसमें किसी प्रकार की घटती नहीं बढ़ती नहीं कुछ नहीं, ये चीज ही अलग है। देखे रूप मोहे नर नारी, ऐसा सीता जी का स्वरूप देखा तो आकाश में जो देवता लोग आए थे, पहले तो केवल फूलों की वर्षा की, अब फूलों की भी वर्षा की और दुंदुभी भी खूब बजाई। सारा हरसि सुरन दुंदुभी बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई, अप्सरा लोग गाने लगे। अप्सरा, अप्सराएं कितनी सुंदर होती है वो भी इसमें, और हाथ में जयमाला सीता जी के। अब सीता जी जयमाला तो ली हुई है और राम जी महाराज की तरफ देख रही है। सी चकित चित रामई चाह भय मुह, बस सब नरना सब देख रही। सीता जी कहाँ देख रही है, वहां देख रही है। सीता जी का ऐसा विलक्षण प्रेम देख करके, पहले उसने क्या राम जी को ढूंढा, राम जी को ढूंढा कहाँ है वो, कहाँ है, ऐसे ऐसे देखती रही बड़ी लाज के साथ संकोच के साथ। और मुनि समीप देखे दो भाई, जब विश्वामित्र जी के पास दोनों को देखा तो लगे ललक की लोचन निधि पाए, ऐसा लगा कि मेरे नेत्रों की कोई एक संपत्ति है वो मिल गई हो, ऐसे देखने लगे। अब देखने तो लगी, लेकिन वहां तो बड़े बूढ़े सब हैं, पिताजी भी बैठे हुए, गुरुजन भी बैठे हुए हैं, अपने राज्य के भी बड़े बड़े पुरुष बैठे हुए हैं, कितना संकोच है। गुरुजन लाज समाज बड़ू देख सी ऐसा कुचानी, मर्यादा कितनी है वो। आजकल तो पति और पत्नी साथ साथ ऐसे घूमते हैं जैसे कोई परिचित व्यक्ति घूमते हो, ऐसे परिचित व्यक्ति, अरे सिर के ऊपर घूंघट है, घूंघट रखना चाहिए, बहुत कायदे से चलना चाहिए, वरना ही। यहाँ गुरुजन लाज समाज बढ़ देख सी सकुचारी, सीता जी देखती है कि मैं कैसे देखूं राम जी को, राम जी की तरफ देखती जाऊंगी तो लोग क्या समझेंगे, तो इतने बड़े बड़े पूरे, मैं छोटी सी बच्ची, तो गुरुजन लाज समाज बड़ देख सी सकुचान लागी बिलोकन सखिन तन। सीता जी क्या करती है, अपनी सखियों से बात करती है, ये बात तो उनसे करती है और थोड़ा सा चितवन राम जी की तरफ है, हृदय में राम जी को रख लिया। राम रूप अरु शिव छवि देखे नर नारिन परिहरी निमेखे, सबके मन में यही आ रहा है, या कैसे सुंदर तो राम है, कैसी सुंदर सीता है। अब तो बस यही है कि हे विधाता, ये जनक जी को थोड़ी अकल दे। जनक जी यहाँ सभा में उछल करके क्यों नहीं कह देते कि मेरी बेटी ये जयमाला लेके आई है और हम राम के गले में जयमाला डालते हैं, हमने हमारा विचार प्राण सब त्याग दिया है, ऐसा क्यों नहीं बोल देते। हटकी ने उनको तो हट पूर्वक विवाह करना चाहिए, लोग कहें तो कहे अरे बेटी इनकी, मन इनका राम के अनुरूप ये वर है, फिर इनको इतने डरने की क्या जरूरत है। हे विधाता, हमारे मन में जैसे राम और सीता के प्रति प्रेम पैदा हो रहा है, ऐसा का ऐसा प्रेम जनक जी के मन में क्यों नहीं आ जाए। ऐसी सबके मन में लालसा हो रही है, यही लालसा मगन सब लोगू बर सावरो जानकी जोगू, ऐसे सब लोग राम और सीता को देख रहे हैं। अब जो है बंदी जन आकर के आगे जनक जी की प्रतिज्ञा सुनाएंगे।
राम सीता राम जय सीता राम
सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता